नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। इन्फॉर्मेशन रूल्स अर्थशास्त्रियों कार्ल शापिरो और हाल आर वरियन की व्यवसाय और रणनीति पर केंद्रित पुस्तक है। यह उस समय लिखी गई जब इंटरनेट आधारित बाजार तेजी से उभर रहे थे, लेकिन इसका केंद्रीय तर्क आज भी उपयोगी है। लेखकों के अनुसार तकनीक बदल सकती है, पर प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारण, ग्राहक व्यवहार और बाजार शक्ति के बुनियादी आर्थिक नियम समाप्त नहीं होते। पुस्तक सूचना वस्तुओं जैसे सॉफ्टवेयर, संगीत, प्रकाशन, डेटा और ऑनलाइन सेवाओं की विशिष्ट लागत संरचना को समझाती है। ऐसी वस्तुओं में पहली प्रति बनाने की लागत बहुत अधिक हो सकती है, जबकि अगली प्रतियां उपलब्ध कराने की लागत बहुत कम होती है। इसी अंतर से मूल्य निर्धारण, बौद्धिक संपदा संरक्षण, उत्पाद के अलग संस्करण और बाजार विस्तार की रणनीतियां प्रभावित होती हैं। पुस्तक नेटवर्क प्रभावों और तकनीकी मानकों की प्रतिस्पर्धा पर भी विशेष ध्यान देती है। इसका उद्देश्य भविष्यवाणियों या तकनीकी शब्दाडंबर से प्रभावित होना नहीं, बल्कि प्रबंधकों को डिजिटल बाजारों के निर्णयों के लिए ठोस आर्थिक तर्क देना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, पहली प्रति की ऊंची लागत और लगभग शून्य पुनरुत्पादन लागत। पुस्तक का आधारभूत विचार यह है कि सूचना वस्तु और पारंपरिक औद्योगिक वस्तु की अर्थव्यवस्था अलग होती है। किसी सॉफ्टवेयर, डिजिटल डेटाबेस, रिकॉर्डेड संगीत या ऑनलाइन प्रकाशन को विकसित करने में शोध, लेखन, डिजाइन, प्रोग्रामिंग और परीक्षण पर भारी शुरुआती खर्च हो सकता है। इसे पहली प्रति की लागत कहा जा सकता है, लेकिन उत्पाद तैयार हो जाने के बाद एक और डिजिटल प्रति देना बहुत कम लागत पर संभव होता है। इसलिए केवल प्रति इकाई लागत में लाभ जोड़कर कीमत तय करने का पारंपरिक तरीका पर्याप्त नहीं रहता। कंपनी को यह समझना पड़ता है कि ग्राहक के लिए उत्पाद का मूल्य क्या है, कितने ग्राहकों तक पहुंचना है और शुरुआती निवेश कैसे वसूला जाएगा। कम पुनरुत्पादन लागत का अर्थ यह भी नहीं कि वस्तु स्वतः मुफ्त होनी चाहिए। मूल्य ग्राहक की भुगतान इच्छा, विकल्पों की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा और उत्पाद की विशिष्टता से निर्धारित होता है। इस संरचना में बाजार हिस्सेदारी महत्वपूर्ण बनती है, क्योंकि अतिरिक्त ग्राहक जोड़ने की लागत कम है। फिर भी शुरुआती विकास लागत, निरंतर उन्नयन, ग्राहक सहायता और वितरण अवसंरचना वास्तविक खर्च हैं। पुस्तक इसीलिए लागत और मूल्य के अंतर को रणनीतिक निर्णय का केंद्र बनाती है। दूसरा, संस्करण निर्माण से अलग ग्राहकों के लिए अलग मूल्य प्रस्ताव। इन्फॉर्मेशन रूल्स में संस्करण निर्माण को सूचना वस्तुओं से अधिक आय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका माना गया है। सभी ग्राहक किसी उत्पाद के लिए समान कीमत देने को तैयार नहीं होते और सभी को समान सुविधाओं की आवश्यकता भी नहीं होती। एक ही मूल सूचना या सॉफ्टवेयर को अलग सुविधाओं, उपयोग सीमा, गति, समय, समर्थन या गुणवत्ता के साथ पेश करके कंपनी विभिन्न ग्राहक समूहों तक पहुंच सकती है। उदाहरण के लिए, अधिक भुगतान करने वाले ग्राहक को तेज पहुंच, विस्तृत कार्यक्षमता या बेहतर सहायता मिल सकती है, जबकि मूल्य संवेदनशील ग्राहक सीमित संस्करण चुन सकता है। इसका उद्देश्य केवल सस्ता और महंगा विकल्प बनाना नहीं है। सही संस्करण निर्माण ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार स्वयं चयन करने देता है। रणनीति की कठिनाई यह है कि सीमित संस्करण इतना कमजोर न हो कि कोई उसे खरीदे ही नहीं, और उन्नत संस्करण का अतिरिक्त लाभ इतना स्पष्ट हो कि ग्राहक उसके लिए अधिक भुगतान स्वीकार करे। बहुत अधिक विकल्प भ्रम और संचालन लागत बढ़ा सकते हैं। बहुत कम विकल्प संभावित राजस्व छोड़ सकते हैं। पुस्तक का आर्थिक तर्क यह है कि जब नकल की लागत कम हो, तब उत्पाद की विशेषताओं और पहुंच की शर्तों को बदलना कीमत से अधिक प्रभावी विभेदीकरण का साधन बन सकता है। तीसरा, नेटवर्क प्रभाव और उपयोगकर्ता आधार की प्रतिस्पर्धी शक्ति। नेटवर्क प्रभाव उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी उत्पाद या सेवा का मूल्य अधिक लोगों के उपयोग करने पर बढ़ता है। संचार प्रणालियां इसका सहज उदाहरण है, क्योंकि संपर्क का लाभ तभी बढ़ता है जब दूसरे लोग भी उसी नेटवर्क में हों। पुस्तक इस विचार को सॉफ्टवेयर मंचों, तकनीकी प्रणालियों और पूरक उत्पादों की रणनीति से जोड़ती है। उपयोगकर्ता आधार बढ़ने पर अधिक डेवलपर, सेवा प्रदाता, उपकरण निर्माता या सामग्री साझेदार जुड़ सकते हैं। इससे उत्पाद अधिक उपयोगी बनता है और नए ग्राहकों के लिए उसे चुनने का कारण मजबूत होता है। यह सकारात्मक चक्र बाजार में अग्रणी कंपनी को महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है, लेकिन नेटवर्क प्रभाव अपने आप स्थायी प्रभुत्व की गारंटी नहीं है। उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत, अनुकूलता, वितरण और प्रतिस्पर्धी विकल्प भी निर्णायक रहते हैं। नए उत्पाद को आरंभिक उपयोगकर्ताओं की कमी की समस्या होती है, क्योंकि ग्राहक उस नेटवर्क को चुनने में हिचकते हैं जो अभी छोटा है। इसलिए कंपनियां आरंभिक कीमत, साझेदारी, पूरक सेवाओं या अनुकूलता के माध्यम से अपनाने की गति बढ़ाने का प्रयास कर सकती हैं। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि नेटवर्क का आकार मात्र लोकप्रियता का संकेत नहीं, बल्कि मूल्य निर्माण और प्रतिस्पर्धा की संरचना का भाग है। चौथा, तकनीकी मानकों की लड़ाई में अनुकूलता और अपनाने की गति। जब बाजार में दो या अधिक असंगत तकनीकी मानक प्रतिस्पर्धा करते हैं, तब श्रेष्ठ तकनीक होना जीत की पर्याप्त शर्त नहीं होती। इन्फॉर्मेशन रूल्स VHS और बीटामैक्स जैसे उदाहरणों के माध्यम से बताती है कि मानक प्रतिस्पर्धा में स्थापित उपयोगकर्ता आधार, पूरक उत्पाद, वितरण, साझेदारियां और अपेक्षाएं बड़ी भूमिका निभाते हैं। ग्राहक अक्सर उस प्रणाली को पसंद करते हैं जो उनके मौजूदा उपकरणों, सहयोगियों या उपलब्ध सामग्री के साथ काम करे। इसी कारण अनुकूलता एक रणनीतिक निर्णय है। कंपनी अपने मानक को खुला रखकर व्यापक अपनाव और पूरक नवाचार को प्रोत्साहित कर सकती है, या उसे अधिक नियंत्रित रखकर गुणवत्ता और प्रत्यक्ष आय पर नियंत्रण चाह सकती है। दोनों विकल्पों में लाभ और जोखिम है। खुलापन प्रतिस्पर्धी भागीदारी भी बढ़ा सकता है, जबकि नियंत्रण अपनाव की गति धीमी कर सकता है। मानक के लिए संघर्ष में समय भी महत्वपूर्ण है। आरंभिक बढ़त उपयोगकर्ताओं और पूरक उत्पादों का चक्र बना सकती है, मगर बाद में बेहतर अनुकूलता या मजबूत गठबंधन से स्थिति बदल सकती है। पुस्तक का उपयोगी निष्कर्ष यह है कि कंपनियों को केवल अपने उत्पाद की विशेषताएं नहीं देखनी चाहिए, उन्हें पूरे तंत्र, ग्राहक के बदलाव खर्च और बाजार के समन्वय की समस्या का आकलन करना चाहिए। अंत में मूल्य निर्धारण, बौद्धिक संपदा और उत्पाद जीवन चक्र का संयुक्त निर्णय। पुस्तक सूचना उत्पाद के मूल्य निर्धारण को अलग थलग वित्तीय निर्णय नहीं मानती। कीमत, बौद्धिक संपदा, संरक्षण, वितरण और अगले संस्करण की योजना एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि कंपनी बहुत कठोर नियंत्रण लगाती है तो अनधिकृत नकल कम हो सकती है, पर वैध उपयोग की सुविधा और बाजार विस्तार भी घट सकता है। यदि पहुंच बहुत आसान या बहुत सस्ती हो तो उपयोगकर्ता आधार बढ़ सकता है, लेकिन शुरुआती निवेश की वसूली कठिन हो सकती है। इसलिए उपयुक्त संतुलन उत्पाद की प्रकृति, ग्राहक की जरूरत, प्रतिस्पर्धा और नेटवर्क प्रभाव पर निर्भर करता है। नए संस्करण की योजना भी केवल तकनीकी सुधार नहीं है। कंपनी को सोचना पड़ता है कि वर्तमान ग्राहकों को उन्नयन का पर्याप्त कारण कैसे दिया जाए, पुराने संस्करण कितने समय तक उपलब्ध रहें और नया उत्पाद पुराने राजस्व को कितना प्रतिस्थापित करेगा। कभी पुराना उत्पाद स्वयं कंपनी के नए उत्पाद का प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। इसीलिए उत्पाद जीवन चक्र का प्रबंधन ग्राहक संबंध, मूल्य स्तर और नवाचार की गति से जुड़ता है। लेखकों का दृष्टिकोण सरल नुस्खा नहीं देता, बल्कि निर्णयों के बीच आर्थिक संबंध दिखाता है। यही संबंध प्रबंधक को कीमत घटाने, पहुंच सीमित करने या नया संस्करण जारी करने के संभावित परिणामों को अधिक अनुशासित ढंग से परखने में मदद करता है। निष्कर्ष में यह पुस्तक उन प्रबंधकों, उद्यमियों, उत्पाद प्रमुखों, नीति विश्लेषकों और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो सॉफ्टवेयर, डिजिटल मीडिया, डेटा, ऑनलाइन मंचों या तकनीकी मानकों वाले बाजारों को समझना चाहते हैं। इसे पढ़ने का व्यावहारिक लाभ किसी तैयार सूत्र की प्राप्ति नहीं, बल्कि निर्णयों को देखने की बेहतर पद्धति है। पाठक समझ सकता है कि कम सीमांत लागत के बावजूद मूल्य क्यों बना रहता है, ग्राहक समूहों के अनुसार संस्करण क्यों उपयोगी हैं, और उपयोगकर्ता आधार किस तरह प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या बाधा दोनों बन सकता है। पुस्तक यह भी सिखाती है कि अनुकूलता, बौद्धिक संपदा और नए संस्करण का निर्णय केवल तकनीकी विभाग का विषय नहीं है, वे बाजार संरचना और आय मॉडल को प्रभावित करते हैं। इसी कारण यह सामान्य डिजिटल व्यवसाय पुस्तकों से अलग दिखाई देती है। अनेक पुस्तकें नई तकनीक के रुझान, संस्थापकों की कहानियां या तात्कालिक सफलता के उदाहरणों पर केंद्रित रहती हैं। शापिरो और वरियन का जोर अपेक्षाकृत स्थायी आर्थिक सिद्धांतों पर है। इसके कुछ ऐतिहासिक उदाहरण आज पुराने लग सकते हैं, लेकिन यही दूरी पाठक को यह परखने में मदद करती है कि कौन से सिद्धांत समय के साथ टिके हैं। नेटवर्क प्रभाव, मानक प्रतिस्पर्धा और संस्करण निर्माण जैसे विचार आज भी मंच आधारित सेवाओं और डिजिटल उत्पादों में प्रासंगिक है। जो पाठक तकनीकी बदलाव के पीछे काम कर रहे प्रोत्साहनों, लागतों और रणनीतिक विकल्पों को समझना चाहता है, उसके लिए यह एक उपयोगी विश्लेषणात्मक संदर्भ है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कार्ल शापिरो, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।